ओम शांति। हमारे बीच आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। हमारे यज्ञ के वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी उपस्थित हैं और इस समय हिंदुस्तान के दिल पर राज्य करने वाले भ्राता ब्रजमोहन जी उपस्थित हैं, जैसा कि नाम में ही शरीक है। माधुर्य और गंभीरता का अद्भुत संगम है आपके हृदय में। पूरब से लेकर पश्चिम तक आपने बाबा के इस ज्ञान की अलख जगाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत कुछ सुनाते सुनाते कब कहेंगे आइए लौट चलें, आपको जाहिर ही नहीं होगा और ऐसा लगेगा अरे क्या वो अब आगे नहीं बोलेंगे, चुप हो गए, क्लास खत्म हो गई। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से गंभीर गुत्थियों को सुलझा लेते हैं और यही एक बड़ी विशेषता आपको उनके द्वारा संपादित प्योरिटी में नजर आएगी। वो प्योरिटी जब प्रारंभ की थी आज पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुकी है। आप उसका संपादन कार्य भी देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मैंने सुबह 4 वरिष्ठ भ्राता गिनाए थे, उनमें आपका स्थान बहुत लोकप्रिय भ्राता के रूप में नजर आता है और आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व दिया। मॉरिशस की हिंदी भाषी कॉन्फ्रेंस में भी और अनेकों बार विदेशों में आपने बाबा का परिचय दिया है। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बोलते तो सब हैं लेकिन बोलना अलग अलग होता है। आपके व्यक्तित्व की ऊंचाइयां केवल इन 2 लाइनों में हैं कि जिस जगह बिजलियों के साए हैं हमने गुलशन वहीं खिलाए हैं। हम भला किसी के रोके रुकेंगे क्या, हमने पर्वतों से ऊंचे शीश पाए हैं। भ्राता ब्रजमोहन जी की हम ऊंचाई नहीं नाप सकते। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के भी सारी देखरेख करते हैं, साथ ही साथ आपके भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा किया। आप फर्टिलाइजर में सर्वोच्च पद पर रहे और जब से बाबा के समीप आए तो उनके रंग में रंगते चले गए। साकार बाबा का सामीप्य भी आपको मिला। आपने अनेकों को दिशा दी। आज हम सबको दिशा देने के लिए विशेष दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं और सदैव यज्ञ में समाधान स्वरूप रहे हैं। हम निवेदन करेंगे कि अपनी वाणी का अमृत हम सबको दे। ओम शांति।
ओम शांति। मैं सोच रहा था बहन जी अपने बोलने में कोई टॉपिक बताएंगे, तुमने टॉपिक तो रखा ही नहीं, अच्छा हो गया अब हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम आपको अपने जीवन का अनुभव, जिसमें बाबा के साथ और बाबा के द्वारा जो पालना हुई, जो जो उसके परिणाम स्वरूप मुझे लाभ हुए, वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि बहुत से भाई बहनों ने बाबा को साकार में नहीं देखा। अगर आप कहें ये ठीक है तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। सिर्फ 3-4 ने हाथ उठाया। अच्छा, आप ठीक है, राइट, क्योंकि हर काम सर्वसम्मति से होना चाहिए। उसके बीच बीच में जो कल की बाबा की बाप दादा की डायरेक्शन है उसको भी उसके साथ थोड़ा जोड़ लेंगे, ताकि कोई ये ना कहे ये पुराना इतिहास सुना रहा। آج ہے 2007 اور ہم بات شروع کریں گے 1955 سے. کتنے ورش ہو گئے؟ 52 ایئرز ہو گئے. تو 52 ایئر پہلے کی بات ہے. 52 ایئر پہلے میں آتما برج موہن دلی میں اپنے لوکک ماتا پتا اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا. تو میرے لوکک پتا کو سواستھ بنانے کا، ہیلتھ بنانے کا اور اس کے لیے یوگ آسن سیکھنے کا بڑا شوق تھا. تو وہ دلی میں ایک جگہ ہے برلا مندر کے پاس، وہاں ایک یوگ سکھاتے تھے، ہٹھ یوگ، وہاں روز سویرے جایا کرتے تھے. ایک دو بار مجھے بھی لے گئے تو میرے سے تو وہ سر پر کھڑے ہونا اتیادی ہوا نہیں، تو لیکن وہ یہ کام کرتے تھے. تو کرتے کرتے ایک دن، ان دنوں میں برہما کماریاں پہلی بار دلی میں آئی ہی تھی، ایک ہی سینٹر بنا تھا کملا نگر میں، تو کسی نے کہا، ان کے فرینڈ نے، کہ کچھ دیویاں آئی ہیں وہ یوگ سکھاتی ہیں. تو ان کو تو یوگ کا شوق تھا ہی، تو بولے تمہارے ساتھ چلتے ہیں یوگ سیکھنے. تو وہاں گئے تو وہاں یہ آسنوں کی بات تو تھی نہیں، لیکن جو بھی بہنوں نے بتایا ان کو اچھا لگا. ویسے بھی وہ آر ایس ایس جو سنگ ہے اس میں جایا کرتے تھے، ہندو پرورتی کے تھے، تو ان کو یہ اچھا لگا کہ یہ سارے وشو کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ تو اپنے دیش کی بات کرتے ہیں، برہما کماری سارے وشو کی کرتی ہے، اور گیان بھی اچھا لگا. تو وہ 5-7 دن گئے اور روز گھر میں آ کر، ہمارا لوکے گھر کوئی 6-7 کلومیٹر تھا، تو آ کر واپس ساری بات ہم کو اکٹھے کر کے سناتے تھے. تو جیسے کسی کبھی کی کویتا ہوتی ہے نا، وہ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے تو بھی پکڑ پکڑ کے سناتا ہے، ہم تو ان کے بچے تھے تو ہم بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے، روز سناتے تھے آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو میری لوکک ماتا کسی گرو کی فالوور تھی، رادھا سوامی گرو کی، اور یہ پتا جی آریہ سماج کے کٹر تھے ممبر. تو آریہ سماج والے گرو کو، دیویوں کو، دیوتاؤں کو، مورتیوں کو نہیں مانتے، اور وہ جی پکے گرو کی چیلی تھی، اور میں جو ہوں میں گرو کے بھی چلے جاتا تھا، آریہ سماج میں بھی چلے جاتا تھا ان کے ساتھ. تو مجھے رادھا سوامی کے بھی سارے بھجن یاد تھے اور آریہ سماج کے سارے منتر یاد تھے. میرا جنم کیونکہ امرتسر میں ہوا ہے، گردوارا جو پرسدھ ہے وہاں کا گولڈن ٹیمپل، تو مجھے سکھوں کی بانی بھی جبانی یاد تھی، اس کے علاوہ میرا بھکتی کا کوئی سنسکار نہیں تھا. کالج کا لڑکا، ماتا پتا نے کبھی فلم نہیں دیکھا، میں فلم بھی دیکھے آتا تھا چوری سے، ہے جی ایسا حساب کتاب تھا. تو ایک دن کیا ہوا، ہمارے لوکک پتا نے بہت کہا کہ تم بھی چلو، آپ بھی چلو برہما کماریوں کے ایک واری تو جاؤ. تو ان کے کہنے کے مطابق میں نے کہا میں دیر سے اٹھتا ہوں، صبح 7 بجے اٹھتا تھا میں، تو وہ کوئی 4:30 بجے جاتے تھے. تو میں نے کہا مجھے جگا کے کار میں پیچھے ڈال دینا، پھر میں چلے جاؤں گا. گیا تو وہاں میڈیٹیشن ہو رہا تھا، اور اس سمے ہمارے اپنے گیت نہیں ہوتے تھے، فلموں کے گیت کچھ ٹیون لگتے تھے اور ایک گیت لگتا تھا. تو اس سمے ایک ناگن فلم بڑی مشہور تھی، اس کی ٹیون لگی ہوئی تھی یوگ کے وقت. تو میں تو خوش ہو گیا فلموں کو دیکھنے والا، کہ جاتا ہی دیکھو واہ لال بتی اور ٹیون لگی ہوئی ہے، تو میں بہت خوش ہو گیا. تو اس کے بعد دادی چندرمنی تھی ان دنوں ٹیچر، تو انہوں نے دیکھا کہ پتا جی کا تو ان کو پتا تھا یہ بڑے اسٹرانگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، آج ان کا بیٹا آیا ہے. تو انہوں نے مرلی سناتے سناتے میرے سے پرشن پوچھا پرائے لوپ کا کیا ارتھ ہے. اب میں نے کامن سینس سے بتا دیا کہ بھائی اگر سوریہ کے آگے بادل آ جائیں تو سوریہ پرائے لوپ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کچھ ایکسٹرا تعریف کر دی، بہت اچھا بہت اچھا، ان کا نظر تو یہ تھی یہ تھوڑا گیان سیکھے گا. اچھا اس کے بعد مجھے کہا گیا آپ ایک ویک کا کورس کرو. تو میں بہنوں سے بڑا شرماتا تھا کیونکہ میری لوکک بہن نہیں تھی. میں نے کہا کسی بھائی کو کہو وہ مجھے کورس کرائے گا. تو دادا آنند کشور جی نے مجھے کورس کرایا. اب وہ کورس کراتے تھے روز, جو کہتے تھے میں الٹا کر دیتا تھا کیونکہ میں وکالت پڑھتا تھا. تو وکیل کا تو آپ کو پتا ہے کہ ادھر کی بات شروع کرے تو ادھر سے کرے گا, دوسری سائڈ سے کرے تو دوسری سائڈ سے. اب انہوں نے شروع کیا کہ میں آتما ہوں, میرا شریر ہے. میں کہوں نہیں, میری آتما ہے. اب کون ضد کرنے سے کون روکے. پانچ چھ دن جھگڑا ہوتا رہا. میں مانوں نا, اور اگر کوئی اور ہوتا تو کہتے بابا جاؤ, اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا جاؤ. لیکن وہ میرے پتا جی کی وجہ سے سوچتے تھے کہ اس کو سناؤ. آخر کیا ہوا, ایک دن انہوں نے کہا آپ کو یوگ سکھائیں گے, ایک بہن جی یوگ سکھائے گی. میں نے کہا سکھاؤ. تو وہ ایک کمل سندری دادی ہے, وہ یوگ میں بہت پرسدھ تھی, ابھی بھی ہے, بیمار ہے تھوڑی. تو اس کو سکے بھی بھول گئے تھے, دو آنا چار آنا کیا ہوتا ہے, اتنی وہ ڈیوائن تھی تپسیا میں. ان کی ڈیوٹی لگی مجھے یوگ سکھانا. میں بیٹھ گیا جا کے, تو میری تعریف کرنے لگی, تم بہت پوتر آتما ہے, شدھ آتما ہے. تو میں اندر سے سوچ رہا تھا, مسکرا رہا تھا کہ میں تو فلم دیکھے آتا ہوں, بازار کا کھانا کھایا آتا ہوں, میری ماتا میرے جوتے اتارتی ہے سوتے سمے, تو میرے کو یہ ایسے کہہ رہی, مجھے فلیٹری کر رہی ہے. میرے من میں یہ چل رہا تھا. اچانک وہ بےچاری انوسینٹلی کہہ رہی تھی, ہر ایک آتما کو شدھ آتما شروع کی گنتی ہوگی. اچانک اس کا فون آ گیا. ان دنوں سینٹر تھرڈ فلور پر تھا اور بیچ میں سے جانا پڑتا تھا گھر ریزیڈینس کی طرف. تو جب وہ چلی گئی تو اچانک کوئی ڈرامہ انوسار میرا کوئی پارٹ ہوگا, تو وہ نہیں تھی, مجھے یوگ ابھی سیکھا ہی نہیں تھا, میں نے بیٹھا تھا. اچانک کیا ہوا, ایک روشنی سی آئی اور میرے کو گھیر لیا اور ہلکا پن محسوس ہونے لگا. میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کیونکہ آنکھیں تو کھلی تھی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, تو ٹھیک ٹھاک بھی تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہونے لگی اپنے آپ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یوگ ابھی سیکھا نہیں اور گیان میں میں ان کی بات کو کاٹتا رہتا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ تو ہے بھی نہیں. اچھا آخر کیا ہوا کہ وہ آ گئی آدھے منٹ کے بعد. تو میرے من میں ایک چینج آئی کہ بھائی ان سے جھگڑا نہیں کرنا, جو یہ کہتی ہیں شاید اس میں کوئی شکتی ہے, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس دن سے میں نے سوچا جو یہ کہیں گے اپنی وکالت کے حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا, آرگو نہیں کروں گا. تو پانچ سات, اور میں نے یہ بھی سوچ لیا ایک بات اگر میری سمجھ میں آ گئی, صرف ایک بات پکی, تو پھر میں آگے چلوں گا. تو پانچ سات دن میں مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ منشیہ پشو نہیں بنتا. میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھئی یہ بات تو پکی, اچھی طرح چاروں طرف سے سوچ ساچ کے ریزن لگا کے یہ پکی بات ہے, منشیہ پشو نہیں بنتا. اور خوشی کی بات ہے, نہیں تو ہم سوچتے تھے چپکلی بنو گے, کسی کی بات سنتے ہو, پیسے کے اوپر بیٹھے ہو, سانپ بنو گے, اتیادی اتیادی. تو بس وہ پکی ہو گئی. تو میں نے اپنے پتا جی کو کہہ دیا کہ گیان ٹھیک لگتا ہے, میں اور سیکھوں گا. کرتے کرتے کچھ دن کے بعد ہمارے ماتا پتا کو مدھوبن میں نمنترن آیا. ان کو چھ مہینے ہو گئے تھے اور ہمیں نہیں آیا, میں اور میرے بھائی کو. ہمیں تھوڑا ٹائم ہوا تھا تو ہم نے بڑی تارے بھیجی, چٹھیاں لکھی کہ یہ کیسا ہے, ماتا پتا کے ساتھ تو الاؤڈ ہونا چاہیے. آخر ہمیں نمنترن آ گیا. اس پرکار سے ہم بابا کے سامنے پیش ہوئے. اب کیا ہوا کہ اس سمے تھوڑے سے بھائی بہن ہوتے تھے, ایک فیملی اور وہ بھی پنجاب کی فیملی آئے تو یگ میں بڑا مانا جاتا تھا کہ ایک گروپ آیا, کیونکہ ان دنوں لوگ سندھیوں کی سنستا کہتے تھے, برہما کماری سنستا, میں نے سندھی. اب تو بہت تھوڑے سے سندھی ہیں. اب بابا نے کام شروع کیا تھا, سخت علاقہ سندھ, اس سے کم سخت علاقہ پنجاب. پنجاب سندھ کو کٹھے گنتے ہیں, ہردوار میں بھی جاؤ تو پنجاب سندھ کھیتر کٹھا ہوتا ہے. خیر تو پتا جی کو بابا نے اور کچھ کہا, میرے ماتا کو اور کچھ کہا, مجھے کیا کہا. پوچھا تم کیا کرتے ہو, میں نے کہا جی میں ایسے ایسے وکالت کا لاسٹ ایئر ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹینسی میں ایک سال رہتا ہے. تو بولے اچھا تم اپنی پڑھائی پوری کر لو, تم پوتر آتما. انہوں نے بھی کہا अब मेरे दिल में हौल पड़ने लगा, वो भी कह रही थी ये भी कह रहा है, बाबा क्या करूं मैं। तो फिर बोला, मेरा छोटा भाई 11वीं क्लास में पढ़ता था, उसको बोला तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम ज्ञान में लग जाओ। तो मैं और हैरान हुआ, देखो मुझे कह रहे हैं पढ़ो, ऊपर से कह रहे विनाश आने वाला है, और इसको कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। अब बाबा तो बाबा ही है। खैर, अब मेरे मन में ये जो आ गया कि बाबा ने कहा तुम पवित्र आत्मा हो, बड़े जोर से मैंने कहा बाबा को कैसे सुनाऊं मैं। तो बाबा का सिस्टम था, मुरली चलाते थे शिव बाबा, उसके बाद एक कमरा होता था जिसमें मुरली के बाद बाबा के आसपास हम इनफॉर्मल ढंग से बैठ जाते थे, उसको चैम्बर बोलते थे। तो वहां बाबा ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे, आज बाबा ये कह गए, आज बाबा ये कह गए, हम भी कुछ पूछ लेते थे। उसके बाद बाबा वो जो अबू में ही है वो जगह जहां ये सेंटर था हेडक्वार्टर, तो वहां से घूमकर एक स्त्री करने का कमरा था गैरेज में, मोटी मोटी लोहे की आयरन, और उसके बाद वो किचन की तरफ आते थे। तो मैं फटाफट जाके उस स्त्री करने वाले कमरे में खड़ा हो गया कि यहाँ बाबा अकेला आएगा, मैं उसको बोलूंगा कुछ। तो बाबा आए, मैं निकला तो बाबा ने पूछा क्या बात है। तो मैंने कहा जी आपने कहा ये पवित्र आत्मा हो, और मैं तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो बोले कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना। चलो तो मेरा दिल ठंडा हो गया, हल्का हो गया कि बाबा को बताया, ठीक हुआ। अच्छा, इसके बाद हम ज्ञान में चलने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं हमने सीए का एग्जाम पास किया तो अपनी अकल से दिल्ली में थे, तो दिल्ली में बहुत अच्छे बिजनेस एरिया में एक दफ्तर ले लिया, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। उसके 10-15 दिन बाद ही बाबा के पास गए, तो बाबा ने पूछा एज ए फादर कि बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया। मैंने बड़े फखर से कहा हाँ जी। फिर बोले क्या करते हो, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बड़ा बढ़िया दफ्तर लिया, मेरे पिताजी का बड़ा परिचय है, मैं प्रैक्टिस शुरू की है। तो बाबा ने मुस्कुराया और मुझे कहा और नजदीक आ जाओ। मैं खड़ा हो गया, बोले कि तुमको क्या चाहिए, दो रोटी चाहिए ना, तुम काहे को ये झूठ सच बोलने का धंधा करता है, हा? जाओ कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब बाबा ने कहा हमने मान लिया, ठीक है। बच्चे थे, वैसे भी बाबा की पर्सनैलिटी भी थी कुछ और तरह की, जबरदस्त अट्रैक्शन भी था और भावना भी थी। तो दिल्ली आके मैंने अपना दफ्तर डिसबैंड कर दिया, अपने भाई को कहा जिसकी किताबें हैं वापस करो, मैं गया ही नहीं। और उसका जो फर्नीचर था वो किसी सेंटर को दे दिया। और पहली बार मैंने अपने अखबार देखा नौकरियां, अच्छा उसमें भी जो पहली नौकरी दिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, वो मैंने नोट करके हाथ से ही एप्लीकेशन लिख के भेज दिया, भाकड़ा नंगल में था। तो मैंने ये भी नहीं पता था कि टाइप करते हैं अर्जी को, भेज दिया। पर पीछे बाबा की ताकत, कौन रोक सकता है। जब हमारा इंटरव्यू के लिए गए तो 9 लड़के थे दिल्ली के ही, जा रहे थे एक ही डब्बे में। तो वो बड़ी इंग्लिश में बड़े स्मार्ट आपस में बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, हमें तो ठीक तरह अंग्रेजी बोलनी, पंजाबी अंग्रेजी बोलते हैं हम, और कोई अभ्यास भी नहीं था। मैं कोने में बैठा दुबका हुआ योग लगा रहा था कि ये इतने बढ़िया लड़के जा रहे, मेरे को कौन रखेगा अंदर ही अंदर। खैर चले गए थे, किराया उन्होंने देना था, गए इंटरव्यू हुआ। अब 5-4 सवाल पूछे, वो तो मुझे आए नहीं क्योंकि पढ़ाई छोड़े टाइम हो गया था। तो ऐसे ऐसे सिर हिला रहे थे इंटरव्यू वाले 5 सवाल में। 6 सवाल पूछा, आप क्या तनख्वाह लेंगे। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि पे स्केल क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा जी जो आप दे देंगे, है ना, और तो कुछ पता ही नहीं। तो जब रिजल्ट आई तो मुझे रखा उन्होंने और किसी को भी नहीं रखा। मैं दिल में सोचने लगा ये क्या हुआ भाई है। मुझे खुद मैंने नोट किया कि ऐसा इंटरव्यू मेरा हुआ है और वो लड़के बड़े स्मार्ट थे, क्यों नहीं रखा। खैर मैं ज्वाइन करने गया तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया जी कि नई कंपनी है गवर्नमेंट की, इसका लॉ है कि सबको मिनिमम तनख्वाह पे रखना है, शुरू करना है, यंग लड़के रखने हैं, और एडवांस सैलरी नहीं देनी, हायर पे नहीं देना। वो सारे लड़के होशियार थे, दिल्ली के थे, और कोई नौकरी करता था उनको पता था ये जंगल है, अभी यहाँ कौन आएगा। तो उन सब ने ज्यादा तनख्वाह मांगी थी, और आपने कहा था मिनिमम, तो इसलिए आपको रख लिया। चलो बाबा ने हमें नौकरी दिलवा दी जैसे बाबा ने कहा था। अब क्या हुआ, उनको 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं तो एक था। तो उन्होंने एक महीने बाद दोबारा विज्ञापन दिया और उसमें 1.5 गुना सैलरी करके दिया कि कोई आए, क्योंकि रखना तो मिनिमम पर था। तो मैं क्योंकि रखा गया था, मेरी 1.5 गुना कर दी आप ही। अच्छा, तो एक महीने बाद मेरी सैलरी भी 1.5 गुना हो गई। अगर पहले होती तो मैं बाहर था, वो अंदर थे। अब क्योंकि इस तरह हुआ तो मैं अंदर था, वो बाहर थे, बाबा ने करवा दिया। तो मेरा और भी फेथ बैठ गया। फिर क्या हुआ कि भारत में ऐसा रस्म है कि जब पहली तनख्वाह मिलती है लोग अपने गुरु को भेज देते हैं। तो मैंने अपनी फैक्ट्री में जो फर्स्ट सैलरी मिली उसका ड्राफ्ट बना के रजिस्ट्री करा के बाबा को भेज दिया। अच्छा, रजिस्ट्री करा के वो वापस आ गया। अब आप सोचो, 21 साल का लड़का हो और उसको ऐसी संस्था मिल जाए जिसको आप पैसा भेजो और वापस आ जाए, उसके दिल पे तो बड़ा भारी छाप पड़ेगा कि संस्था को पैसे वैसे की कोई वैल्यू नहीं। बाबा ने लिखा, तुमको किसने कहा है कि भेजो, बाबा और बच्चे कोई अलग थोड़ी है। अच्छा, तो मेरे को फिर जोश आया, मैंने कहा मुरलियों में आता है कि बाबा जिसका भाग्य बनाना चाहे बना देता है। बाबा सराफ है, बिजनेसमैन है, एक का बहुत गुना करके देता है, इसलिए ऐसे लेता नहीं किसी का। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरे मन में आया। फिर मैंने लेटर लिखा कि बाबा ये तो आपने ही कहा था गवर्नमेंट जॉब कर लो, इसमें झूठ सच नहीं है, और आपके कहने से मैंने किया है। फिर वो मुरलियों के पॉइंट लिखे कि आप मेरा भाग्य नहीं बनाना चाहते आदि आदि। फिर चिट्ठी लिखी, रजिस्ट्री करके भेज दिया। फिर बाबा ने रख लिया, लेकिन एक चिट्ठी लिख दी, आपके तो बाबा रख लेते हैं। बाबा का लेटर हमेशा होता था पत्र पाया हर्षाया, 5-4 शब्द होते थे उसमें, लेकिन सारा भाव आंसर में आ जाता था। मोटी पेंसिल बाबा रखता था, जिसको कहते हैं B3, बहुत मोटी, और 4-5 शब्द से वो पन्ना भर जाता था। किसी को 2 पन्ने का लेटर आ जाए तो बहुत खुश होता था, लेकिन हम कितना लंबा भी लिखें उसमें भाव अर्थ था। खैर, इस तरह शुरू हो गया। अब हमने अपने जो हमें सरकार की तरफ से स्थान मिला उसमें सेंटर बना लिया। 17 साल वहां रहे, इस बाबा के पास आते जाते रहे। इसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई तो 2-4 आपको सुना देते हैं। क्या हुआ, हम मधुबन में गए तो एक वक्त बाबा सुबह सुबह कोई चीज दूर बैठे थे और कुछ पी रहे थे, और बड़ा स्वाद लेकर पी रहे थे, आवाज करके, जैसे होता ना कोई आवाज करता ऐसे स्वाद लेकर। मैं बड़ा खुश हुआ कि बाबा पी रहा है कुछ। मैं नजदीक गया, मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं। बोले तुम पियोगे, मैंने कहा हाँ। तो उसमें था करेले का जूस और वो बाबा पी रहा था। तो बाबा ने मुझे दे दिया, लो बच्चा पियो। अच्छा, अब तो मैं पी जाता हूँ, उस वक्त मुझे कुनीन जैसा कड़वा लगे। मैं कहा ये क्या ले लिया, और ना मैं उसको छोड़ सकूं, यज्ञ की चीज है, बाबा की दी हुई। तो मेरा मुंह बन गया उसको पीते समय। अब मैंने कहा बाबा तो स्वाद लेकर पी रहा था, शायद मेरे को ऐसा ही होना था। अच्छा, 1-2 घोंट पिए थे, अब सोच रहा था क्या करूं। इतने में मम्मा आई, तो मम्मा ने मुझे देखा, बोली क्या बात है। मैंने बताया तो मम्मा ने कहा अच्छा रख दो। तो मैं बचा उसमें, ऐसा हुआ। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि मुझे आम खाने का शौक है शुरू से ही। तो उस महा उन दिनों ये होता था, जो भी परिवार आए उसको एक बारी बाबा के साथ भोजन करने का अवसर मिलता था, और सब लोग वेट करते थे कि उस दिन हम बाबा के साथ भोजन करेंगे। तो हमारे परिवार को भी एक उस दिन भोजन बाबा के साथ करना था। हम बड़े उत्सुक थे, वाह बाबा के साथ भोजन करेंगे। बैठ गए, ये लच्छू दादी जो है बाबा की ब्राह्मणी थी, तो भोजन में आम काट के मिले थे सबको। तो मेरी माता को पता था लौकिक को कि आम का शौकीन है, तो उसने बहुत चुपके से टेबल के नीचे से अपना आम मेरी तरफ खिसका दिया। अच्छा, मां हुई। अच्छा, अब मैंने भी बड़े धीरे से पकड़ लिया। अच्छा, हमने समझा बाबा ने देखा नहीं, बाबा अपना काम कर रहा है। तो जो खिसकाता है, चोर जो होता है, बहुत बच के काम करता है। अब क्या हुआ, भोजन पूरा हो गया, जब पूरा हो गया तो बाबा ने लच्छू को कहा, लच्छू बच्ची जाओ एक टोकरी में आम लेके आओ। वो टोकरी सजाकर आम ले आई और बाबा ने मुझे दे दिया, लो बच्चा ले जाओ। तब मैंने समझा कि ये बाबा ने तो देख लिया था और उसने आम दे दिया। अब क्या हुआ कि कोई समझे वो बाबा इतना शार्प होशियार तो वो ऐसे करेगा चुप जाएगा। तो तब से मेरा बाबा से वायदा है कि अब अव्यक्त बाबा हो गया कि चाहे मैं दुनिया के किसी कोने से आम लाऊं, मैं भोग में आम जरूर लाता हूं, चाहे दुबई से मंगाना पड़े या फिलीपीन से मंगाना पड़े, सारा शहर घूमना पड़े, क्योंकि बाबा ने आम दिया हुआ हमें। इस तरह से स्नेह की बात है। अच्छा मान लो बाबा कल आए तो मुझे आम को कुछ दिन पहले लेना पड़ता है कि पका हुआ होना चाहिए, उस दिन बढ़िया ना मिले फिर मैं उसको बच्चे की तरह पालता हूँ, रखता हूँ लपेट कर, देखता हूँ पक रहा है बाबा के लिए ठीक है, तो मुझे बड़ा मजा आता है, योग भी लग जाता है। अच्छा फिर बाबा सिखाते कैसे थे? बाबा इस तरह सिखाते थे कि जो रोजाना घटना होती उसमें से ही सिखाते थे। हुआ ये कि मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा आमतौर पे क्या करते हैं अपने लौकिक पिता जो दुनिया भारत वाले हैं हिंदू लोग, उसकी ड्रेस वगैरह सामान दान कर देते हैं ब्राह्मण को, यूज नहीं करते। मैंने सोचा मैं तो सच्चा ब्राह्मण हूं और उनकी ड्रेस मुझे फिट बैठती थी, ऑफिशियल ड्रेस, और मैं ऑफिसर भी था तो उनके 33 या 34 ड्रेस थे वो सारे मैंने रख लिए कि भाई यज्ञ का पैसा बचेगा और ये फर्स्ट क्लास ड्रेस पहनूंगा मैं। अब क्या होता था कि जब हम बाबा के पास आते थे तो लास्ट दिन जिस दिन विदाई का दिन होता है, जैसे यहाँ कहते हैं ना सौगात, तो बाबा कुछ सौगात देते थे, बाबा से मिलते थे, विदाई लेते थे, बाबा कुछ सौगात देते थे। तो क्योंकि उन दिनों के विदेशों में सेंटर तो थे नहीं, कुछ भारत के भाई बहन विदेशों में रहते थे सिंधी लोग, तो इंडिया में रेडीमेड ड्रेस का भी फैशन नहीं था उस समय। हमारे लोग तो टेलर से सिलवाते हैं, जरा छोटा कर जरा बड़ा कर, ऐसे नहीं जो मिला पहन लिया, है ना। और उस समय तो बिल्कुल ही रिवाज नहीं था, तो कुछ ड्रेस विदेश से आते थे बाबा के पास, तो बाबा हिसाब से रख लेता था कि ऑफिसर है इसको ये एक ड्रेस दे देंगे। यहां तक कि मुझे बाबा के मिले हुए ड्रेस इतने थे कि अपनी कंपनी में मुझे बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन मानते थे। कोई कहीं कहीं से सूट पहना हुआ, कहीं कहीं का दफ्तर में मेरे से कई अफसर पूछते भी थे कहां से लिया है कैसे बनाया है, तो मैं उनको ऐसे छेड़ने के लिए कहता था, गांव था पास में वहां के टेलर से सिलाया, ऐसा होता था। अब क्या हुआ कि बाबा ने उस दिन भी जिस दिन विदाई का दिन होता, क्योंकि हम आबू से पंजाब में जाते थे तो अपने ऑफिस की ड्रेस पहन लेते थे लास्ट दिन, वो पहन के मैं विदाई लेने गया तो बाबा ने कहा, बच्चे एक ड्रेस आया हुआ है आपके लिए रखा हुआ। तो मैंने बड़े फखर से जैसे अबोध बच्चा होता है मैंने कहा, बाबा अपनी कार्रवाई बताने के लिए कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है ना, उनके इतने ड्रेस थे और मेरे बिल्कुल फिट थे, वो सारे मैंने रख लिए हैं, ये देखो मैंने पहना भी हुआ, उस वक्त मैंने अपने पिता का ही ड्रेस पहना हुआ था, कितना फिट है। तो बाबा मुस्कुराए तो बोले कि बच्चा अगर लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। सचमुच थोड़ा सा जब भी मैं अपने पिता का ड्रेस पहनता था ख्याल तो आता था फादर का, ये तो रह नहीं सकता, बाबा तो कहता कि इससे गिफ्ट ले लोगे तो भी आपको आएगा, लाने का गिफ्ट है। लच्छू दादी की बात सुनाई वो बाद में आई है, देखो कोई बात नहीं। अच्छा अब क्या हुआ, मैंने समझ लिया, बाबा ने ले लिया वो ड्रेस और अगली बार वो सारे के सारे ड्रेस मैंने यज्ञ में सरेंडर कर दिए। हमें भक्ति में सिखाया जाता था कोई रस्ते में पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो चीज तो अपने पास नहीं रखना, अंदर में रख दो। ऐसे ही मैंने कहा ये ड्रेस यज्ञ में डाल दो, यज्ञ से बाबा जिसको मर्जी दे देगा, मैं तो छूटा। लो जी कर दिया, शिक्षा भी ले ली। उससे अगली बार जब मैं माउंट मधु बन गया तो आबू के लोग कहाँ बू शर्ट पैंट पहनते हैं, अपने यज्ञ के वस्त्र तो सफेद कपड़े पहनते हैं। तो मैंने देखा एक भाई धोबी घाट पे कपड़े धो रहा था और उसने मेरे फादर का बू शर्ट पहना हुआ था, ऑड जॉब के लिए भी चलो सफाई करनी है पहन लो तो कितना भी फैंसी हो, वो धो रहा था। फिर भी मेरे दिल में आया, ओह मेरे फादर का भूषण पहना हुआ, तो मेरे और पक्का हो गया कि अब उससे जान भी छुड़ा ली तब भी याद आ रहा कि मेरे फादर का है, मैं पहनता रहता तो क्या हाल होता है जी। इस तरह से बाबा बहुत प्रकार की हम लोगों को शिक्षाएं देते थे। फिर बाबा को किसी का रिस्पेक्ट रखना हो, और लौकिक बाप क्या करता है, और लौकिक बाप क्या करता है, लौकिक रिलेटिव कितना स्नेह देते हैं, उसका भी बाबा सिखाते थे। मैं और मेरी लौकिक माँ जब मधुबन आए एक बार, तो मैं कंजूस नेचर का हूँ, मतलब इकोनॉमिकल, यज्ञ का पैसा बच जाए, तो मैं तो बस से उतरकर और एक आबू में एक बच्चों गाड़ी मिलती है उसमें अपना सूटकेस रख के आठ आना दे के आश्रम में पहुंच जाता था। तो लौकिक माँ आई तो वापसी पर हमने बस में टिकट बुक करा लिया, चार आने दे के बुक हो जाता था। तो अचानक बाबा से मिलने गई, तो बाबा ने कहा बच्ची कब जा रही हो, बोला परसों जा रही हूँ। कैसे जा रही हो, उसने कहा उसने मेरी बस में टिकट बुक कराई। बस में कराई, बुलाओ उसको। बाबा ने मुझे बुलाया, तुम इनका बस में ले जा रहे, नहीं इस माता को टैक्सी में लेके जाओ। अच्छा जी, तो मेरी माता को ख्याल तो होगा कि नहीं, लौकिक बच्चा ऑफिसर होकर मुझे बस में ले जा रहा है और बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है, उसका स्नेह किससे ज्यादा होगा, नेचुरली उससे होगा। फिर हम ये देखते हैं, सुनते थे भक्ति मार्ग में कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उसके संग में आप रहने से हल्के हो जाते हैं, ना साधु के संग में रहने से हल्के हो जाते हैं। उसका मैंने डायरेक्ट अनुभव किया। एक बार मैं पंजाब से चला, उन दिनों रेलवे रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता था, चला 6 रुपए दिल्ली से किराया होता था माउंट आबू आने का रेल का, है जी, वो दिन दूसरे थे। अच्छा, वहां से आया, फिर दिल्ली में आया, दिल्ली से ट्रेन में आया, करते किराते यहां से फिर वो ट्रॉली में आया। तो माउंट आबू में मैं पांडव भवन में दोपहर के 2:15 बजे पहुंचा, पिछले रास्ते से थका हुआ, काला ड्रेस, 2 दिन के चले हुए। तो मुझे जगह मिली ऊपर, जो गुंबज है वहां आपने देखा होगा, एक उसको एरोप्लेन कहते हैं, एक पीछे गुंबज है दो, उसमें जगह मिली। तो मैं लुढ़कता थकता थकाता अपना सामान लेकर वहां रख दिया और सोचा कि अभी तो सब सो रहे होंगे, चाय के वक्त उठूंगा, ड्रेस भी नहीं बदला, खाट पे बिस्तर भी नहीं बिछाया, लेट गया ऐसे थका हुआ, खूब रेस्ट करेंगे, व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। अचानक मैंने क्या देखा कि खड़ाओं की आवाज आ रही, बाबा लकड़ी का खड़ाओं पहनते थे, तो सीढ़ी चढ़ रहा है ना, कोई ठप 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 आवाज आ रही है, नजदीक आती जा रही। तो मैं समझ गया बाबा ऊपर आ रहे हैं, और बाबा के साथ हमेशा बच्चे रहते थे, और बाबा सबाए ज्ञान देने के कोई भी चीज और दूसरा शब्द कभी निकाला ही नहीं बाबा ने। तो मैंने सोचा ये देखो मेरी भूत जैसी ड्रेस, मिट्टी भरी हुई, क्योंकि उन दिनों तो डब्बे ओपन थे सारे, 2 दिन का सफर, और मैंने तो बिस्तरा भी नहीं बिछाया, बाबा अगर आ गए तो क्या कहेंगे, ये क्या है। तो मैंने क्या किया और कुछ नहीं सोचा, उसका रूम का कुंडा बाहर से लगा के बाहर खड़ा हो गया, कम से कम बाबा कमरे में नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा, बाबा आए, साथ बच्चे थे, और बाबा सीधे पानी की टंकी थी ऊपर एक, उसके पास गए, उसको खुलवाया। एक्चुअली बाबा वो टंकी देखने आए थे, इसमें जंग तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, खुलवा के बाबा ने ज्ञान देना शुरू कर दिया, देखो बच्चे इसमें जैसे जंक लग जाता है, इसको घासलेट से केरोसिन से साफ किया जाता है, आत्मा को भी जंक लग, कुछ ज्ञान सुनाते रहे, मैं खड़ा रहा। तो थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा बच्चे आप आए हो, बाबा फिर चले गए। उन्होंने ना मेरी ड्रेस पे कमेंट, मेरे मन में ही था सिर्फ, कहा कुछ ना कुछ कहा, वो तो आत्मा को देखते थे, चले गए। उसके बाद मुझे जो व्यक्ति इतना थकावट महसूस कर रहा था कि मैं 2 घंटे लेटूंगा, ये मुझे ऐसे लगा वेटलेस, कि शरीर हल्का और कोई थकावट नहीं, खुशी। और मैंने 2-2 सीढ़ी जंप करके नीचे गया, चाय बनाई, और उसके बाद थकावट हुई नहीं। तब मैंने देखा ये जो कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं की कंपनी से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, सचमुच मिलती है। इस तरह से अनेका अनेक घटनाएं होती रही। अच्छा, फिर देखो, वैसे तो बाबा कहता है कि मैं लौकिक का लौकिक का थोड़ी हूँ मैं तुम्हारे, लौकिक तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो, क्या मैं बाबा तो ज्ञान सुनाता है आत्मा परमात्मा का पते पावन बनने का, लेकिन डिपेंड करता है। तो बाबा हमारे लौकिक का भी इतना ध्यान रखते थे जो बात ना पूछो। तो क्या होता था, हमको जो तनख्वाह वगैरह मिलती थी, बाबा ने कह दिया था कि आप सेंटर चलाओ, और सारे पंजाब में हम सेवा करने जगह जगह चले जाते थे। अब चले जाते थे तो साल में समझो 52 संडे होते हैं, तो 48 सैटरडे संडे हम बाहर ही रहते थे, और फिर भी पैसे बच जाते थे, खर्चने तो है नहीं, तो वो हम फिक्स डिपॉजिट करा देते थे, बाबा को बताया हुआ था। उन दिनों एक बहुत बड़ी कंपनी निकली थी, शिपिंग कंपनी, उसमें हमने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, वो जापान से इधर उधर से जहाज खरीदकर हिंदुस्तान में अनाज आता था अमरीका से, ऐसी कोई कंपनी थी। वो कंपनी के कुछ गड़बड़ थी तो फेल हो गई, तो बाबा को पता था इसने इसमें पैसे रखे हुए हैं, तो मेरे एडवोकेट ने बता दिया था फेल होने वाली, आप इसके पैसे निकाल लो। मैंने तो निकाल लिए थे, लेकिन जब मैं माउंट आबू गया, पहला बात बाबा ने पूछा, अखबार बाबा पढ़ता था, बाबा बच्चे तुम्हारे उसमें पैसे थे ना? मैंने कहा बाबा मैंने निकाल लिए। तो जैसे एक बाप को ठंड पड़ती है ना कि बच गया, ऐसे मैंने नोट किया कि बाबा को इतना कंसर्न हम बच्चों के लिए रहता है। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हमने बाबा से सीखी। एक बार बाबा का बॉम्बे में ऑपरेशन होना था, सी बड़ा ऑपरेशन था, उसमें नाली ऐसे कुछ पकड़ के बाबा आबू से बॉम्बे गए ट्रेन में, हम साथ गए, बड़े खुश थे बाबा के साथ जा रहे हैं। तो जब ऑपरेशन होना था, बाबा को कोई जैसे कमरा चमक रहा है, बाबा की तांबे जैसा बाबा का चमकता शरीर था, बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे थे, लेकिन हॉस्पिटल का सारा वातावरण हॉस्पिटल जैसा नहीं था। एक दिन में ऑपरेशन हुआ, अगले दिन हम मिलने गए, तो बाबा बेड को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ना, तो सिर जरा ऊंचा था, बात कर रहे थे, तो लौकिक वाले रिश्तेदार भी दूर दूर के मिलने आ रहे थे। तो हमने देखा बाबा किसी से लौकिक बात नहीं करता था, तू फलाना है, बस उसको ज्ञान ही सुनाते थे। और वो आके कहते थे, अरे इनको हमने 50 साल पहले देखा था, ये तो वैसे ही है, हमारे तो दांत भी निकल गए, हमारे तो ऐसे हो गए, अपने आप वो सिंधी लोग कहते थे। नर्सें आती थी तो बाबा तो भी ज्ञान देते थे, देखो ये नर्स कितनी एक्यूरेट है, अपने टाइम पे आती है, ऐसे बहनों को कहते थे तुमको एक्यूरेट बनना है इस तरह से। और बाबा को नर्स स्पंज कराने आती थी तो कहते थे मैं आप ही कर लूंगा। ये सब हमने देखा, ज्ञान सुना रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं। अच्छा ये बात तो खत्म हो गई। अब मेरे को बचपन से ही और सब चीजों के लिए ताकत थी, लेकिन शरीर को कुछ हो जाए तो मैं सोचा करता था फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं बचपन में हमारा डॉक्टर कॉलरे का टीका लगाने आता था, फैमिली में मैं भाग जाता था, मुझे पकड़ पकड़ के लाते थे, और मैं हमेशा ये डॉक्टर इंजेक्शन से बहुत डरता था। जब बाबा ऐसे करवा रहे थे मैं हैरान होता था कि ये कैसे होता। अच्छा इसी प्रकार से तो बाबा फिर बच्चों को सब परीक्षाओं से भी पार करता है। एक बारी मुझे भी वो कराना पड़ गया, बाद में ज्ञान में काफी साल के बाद कराना पड़ गया, तो मेरे तो वही संस्कार था डरने का। तो मैं बाबा के कमरे में गया, मैंने कहा अपने मन से प्रश्न किए, बाबा आपको तो पता ही है कि मैं इससे बहुत डरता हूं, और मेरे में बड़ी हिम्मत है, आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे विनाश तक भी मैं इस बीमारी से चल पड़ूंगा, मेरे पत्थर ही हो गई थी, तो मेरे में शक्ति है, तो मैं ना कराऊं ऑपरेशन। अच्छा फिर मैंने दूसरा प्रश्न बाबा को लिख के मन से भेजा कि मेरे लौकिक पिता का भी उस पथरी के ऑपरेशन में शरीर छूटा था, आपको तो पता ही है पिता का शरीर छूटा था, मुझे भी वही बीमारी है, इसलिए मैं एक ही बच्चा हूं मां का बचा हुआ, उसको ख्याल आएगा मैं ना कराऊं ऑपरेशन। ऐसे मैंने 5-6, फिर मैंने एक ऐसा भाई था जिसको बाबा ने कहा था तू ऑपरेशन करा ले, उसका शरीर छूट गया था, मैंने कहा अगर आप कह भी दें करा ले कुछ नहीं होगा, तो उसका तो शरीर छूट गया था, इसलिए मैं सोचता हूँ आपसे पूछूं भी कैसे, तो मैं ना कराऊं ऑपरेशन। ऐसे मैंने 5-4 प्रश्न रखे, मेरा मतलब था मैं बच जाऊं। अच्छा अब मेरे सामने बिल्कुल, वैसे मेरे को ध्यान में नहीं जाता, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए आंसर आते हैं ना, हर एक प्रश्न का आंसर आ गया कि बच्चा जरूरी नहीं है कि जिस बीमारी से पिता का शरीर छूटे उसी से बच्चे का छूटेगा। उस समय मेडिकल साइंस कम थी, अब ज्यादा है। अच्छा, फिर मैंने ये भी कहा था मेरा दिल कमजोर है, मेरा दिल कमजोर है। अगर मान लो कि मत देखो उधर, वो कुछ ऐसी तो बहुत घटनाएं होती रहती, मेरा दिल कमजोर है, और अगर ठीक भी हो गया ऑपरेशन तो होते ना ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड, हार्ट अटैक हो जाता है, तब क्या होगा? तो बाबा ने कहा तुम्हारे साथ बाबा है ना, ये भी कहा। आखिर में बाबा ने ऐड किया हुआ था, सारे ब्राह्मण परिवार को पता है तुम्हारे को ये है और तुम्हें कराना है ऑपरेशन, तो वो कहेंगे ये बिल्कुल ऐसा ही पंडित है, कोरा पंडित है, अंदर से डरता है और इसीलिए ऑपरेशन नहीं करा रहा। तुम इस सब तुम्हारे लिए ये भाव रखें, तुम इसके साथ जीना पसंद करोगे? तो मेरे मन में आया नहीं, तो बाबा ने कहा इसलिए ऑपरेशन करा लो। अच्छा जी, फिर मुझे उसने बहुत मदद की, सिर दर्द जितना भी पता नहीं लगा कैसे मुझे शक्ति दी, वो लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने वही करवाया, बॉम्बे जाके कराया और उसी तरह मेरे नाली लगाई गई, उसको मैंने पकड़ा, मुझे बाबा याद आता था और अगले दिन ही मैं ठीक ठाक हो गया, मतलब ताकत आ गई। तो वो कहते थे कि उस बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो जसलोक हॉस्पिटल है, उसमें दादियों के भी कुछ रिश्तेदार हैं, तो वहां 13 कमरे थे उसमें, और 13 में ही बड़े बड़े अमीर आदमी, अरब के सेठ सूट रहते थे, वो चिल्लाते थे। तो नर्सें मेरे पास लाने लग गई कि इनको हिम्मत दो, मैं तो खुद सोचता था मेरा क्या हाल होगा। तो समझो बाबा ने शक्ति दी, और संकल्प में कितनी शक्ति होती है। मुझे कहा गया कि पहले दिन आपको उल्टी आने की इच्छा होगी, लेकिन इसलिए आप तैयार रहना। तो मैंने जिंदगी में कभी उल्टी नहीं की, मैं तो इम्पोर्ट ही करता रहा, कुछ भी खिला दो उल्टी होनी नहीं। मैंने कहा उल्टी कैसे होगी? तो लेकिन वो कुछ करते हैं, पानी पुनी जमा हो जाता है। तो रात को 11 बजे मुझे ऐसे हुआ, तो नर्स तो हर वक्त खड़ी रहती है, वो ले आई उल्टी कराने का। तो जब आ गई पास, तो मैंने सोचा संकल्प शक्ति यूज करो, तो मैंने कहा मन में धारा उल्टी को गो डाउन, तो उल्टी नीचे चली गई, मैं खुश हो गया। अभी वो नर्स वापस रखने गई थी, तो उससे 300 गुना ज्यादा शक्ति से वो फिर बाहर आए उल्टी, और गले तक आ गया, जैसे खट्टा खट्टा। मैं अब मैंने कहा अब तो होना ही है, वो फिर आ गई। फिर भी मैंने कहा कि नहीं एक बार फिर ट्राई करो, तो मैंने 1000 गुना शक्ति से कहा गो डाउन, उसके बाद आज तक वो उल्टी मुझे नहीं आई। ये भी मैंने देखा, टेस्ट किया। तो ऐसे ऐसे बाबा की बहुत सारी घटनाएं होती थी जो मैं नोट करता था, बाबा को याद करके करो आपका सफल हो जाएगा। एक बार जहां हम रहते थे भाकड़ा नंगल में, वहां से ट्रेन चलती है, तो जो ट्रेन चलती है वहां से तो बनती है। हम सैटरडे को एक शहर था दिल्ली के पास, वहां सेवा करने गए और रात को ही हमें वापस आना था, लेकिन आती बार दिल्ली से ट्रेन चलती है वो तो 9 बजे चलती थी, भीड़ भाड़ होती थी, 11 बजे वहां आती थी। तो सारा दिन हम सेवा करते रहे, थके थकाए स्टेशन पर आ गए, और उन दिनों रिजर्वेशन तो था ही नहीं। तो मैंने मन में धार लिया कि मेरे सामने जो डिब्बा आएगा उसी में मैं चढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, और बाबा आपको मुझे सीट दिलानी है। हालांकि साधारण बात है। लो जी ट्रेन आई 11 बजे रात के, गर्मियों के दिन लोग बैठे हैं, जाग रहे हैं। तो पहले एक सेकंड के लिए मेरा मन हिला, देख लो, फिर मैंने कहा नहीं, एक टांग पे खड़े होकर जाना पड़े, मैं उसी डब्बे में चढ़ूंगा जो मेरे सामने आएगा। लो जी डिब्बा आया, मैं चढ़ा। 11 बजे कोई ताश खेल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, अनरिजर्व डिब्बा, ऊपर के 3-4 सीटें होती हैं कैबिन में, उसमें लोग सोए हुए हैं, जिसको मिल जाए। मैं एक कैबिन में गया, दूसरे में गया, मैंने सोचा ऐसी बातें बाबा के साथ करनी नहीं चाहिए, बाबा कब कहता छोटी छोटी बातें करो, शायद मैंने गलती की है। जब लास्ट कैबिन आ गया तो एक व्यक्ति जो ऊपर सोया हुआ था, वो उसने अपना बिस्तरा रोल किया, उतर गया और मैं उसकी जगह लेट गया। अब मैं हैरान कि ये मेरे लिए वेट करता रहा, उतरना इसने यहीं था, अगर ये पहले उतर जाता तो नीचे वाले बैठ जाते, ये क्या हुआ? तो फिर मैंने देखा ये है उसका फल जो है संकल्प शक्ति का। ऐसे बहुत बहुत घटनाएं होती रही। अब मेरे पास 3 मिनट टाइम है, तो मैं आपको एक लास्ट घटना और सुना देता हूं। अच्छा हमें पता भी नहीं था कि हमें फुल सरेंडर होना है। हम तो खुश थे कि अपना जॉब भी करते हैं और सेवा भी करते हैं और उसमें बड़ा मजा था। अपने हाथ से खाना बनाते थे, वो जो अपने हाथ से हमने खाना बना के खाया है वो इतना स्वाद था आज तक नहीं मिला वो, क्योंकि चाहे जला हुआ हो अच्छा हो अपने हाथ का था। और सेंटर भी क्लास भी कराते थे, बड़ा मजा था। अच्छा अब हुआ ये, बाबा को हमें सरेंडर करवाना था, हमें नहीं पता, हम तो अपना खुश थे। तो एक बार बाबा अव्यक्त हो गए थे, तो अव्यक्त बाबा आए उन दिनों कमरे में मिलते थे, तो मेरे को ऐसे बाई दी में पूछा, तुमने कोई आप समान बनाया पंजाब में? मैंने सोचा मेरी तो हो गई छुट्टी, शायद शरीर छूटने वाला है। जो बाबा कह रहा है तुमने आप समान बनाया है ना, बाबा पूछ रहा है अभी क्या करें, तो क्यों पूछ रहा है अचानक तुमने आप समान बनाया? तो बाबा ने समझ लिया ये बहुत सोच रहा है। बाबा ने कहा जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कोई आप समान बना लो, कभी व्यक्ति जा सकता है कभी नहीं, तो तुम एक आप समान बना लो। अच्छा उसी समय बाबा के कमरे में मेरे आगे दो चेहरे उभरे, एक लक्ष्मण भाई जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं और एक मीरचंद भाई जो चंडीगढ़ में रहते हैं। मैंने कहा आगे से मैं इनको भेज दिया करूंगा। तो मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया, कोई प्रोग्राम हो तो मैं कहूं मैं नहीं आ सकता, आप चले जाओ आप चले जाओ। तो अगली बारी मैं गया तो बाबा, मैंने मन में धार लिया आप समान बना लिया, वो जाते हैं। मैंने कहा बाबा मैंने आप समान बना लिया। अच्छा बाबा बोले अब ये बताओ कि तुम जॉब करते करते सेवा करना पसंद करते हो या फुल टाइम बाबा की सेवा अच्छी लगती है तुमको? बाबा पूछ रहा है। तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं थी, मैं ऑफिसर था, सरकार का काम था, दो चार साइन कर दिए, कई 17 साल से वहां था तो बच्चा बच्चा जानता था। तो मैंने कहा बाबा मुझे तो एक कोई फर्क नहीं, दोनों ही ठीक है। बाबा बोले नहीं कुछ 19-20 बताओ कि तुमको ये ईश्वरी सेवा अच्छी लगती है अकेली या दोनों? फिर भी मैंने कहा जो मेरे, मैंने कहा जी मेरे लिए तो दोनों ही ठीक। अच्छा तो बाबा ने मेरे पीछे गुजरात की टीचर बहन थी जो स्कूल में पढ़ाती थी, उसने कहा बाबा मैं चाहती हूँ ये लौकिक सर्विस छोड़कर मैं बाबा की सेवा करूं। तो बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया, देखो उसको मैंने पूछा है वो तो कहता है कि जो सब ठीक है, तुम समझो तुमको भी बाबा ने टीचर रखा हुआ है, जब बाबा ने हटाना होगा आप पे छुड़ा देगा। खत्म हो गई बात। तीसरी बारी गए तो बाबा ने कहा तुम कभी सेंटर में रहे हो? मैंने कहा हाँ बाबा, मैं दिल्ली में 2 महीने रहा था, म्यूजियम बनवाया था, वहां रहा था 1 महीना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं फुल, ये तो मेहमान के तौर पे रहे हो तुम, ऑफिसरों पल ले गए, सेंटर वालों को पैसा दिया है, नहीं तुम सेंटर में जो होता बड़े भाव स्वभाव आते। मैंने तब भी नहीं समझा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बाबा मेरे तो इतना ही रहा हूं बस। बाबा मुस्कुरा दिया। अच्छा उसके बाद दिल्ली में पहला मकान जो ब्रह्मा कुमारी ने खरीदा है आबू के अलावा, वो 1972 में पांडव भवन खरीदा, फर्स्ट बिल्डिंग। उन दिनों हालात बदल गए थे, मालिक मकान ऑर्डर नोटिस देने, तो उस वक्त बहनों ने कहा तुम वापस दिल्ली में आ जाओ, दादियों ने कहा। तो मैंने कहा जी मैं तो आ सकता हूँ लेकिन नौकरी में आऊं, फिर मैं वहां दफ्तर में जाऊं आऊं, बहुत नौकरी कर ली आप कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। बोले जैसे तुम्हारी मर्जी है तुम दिल्ली में आ जाओ। तो मैं ये सोचकर कि मैंने अब नौकरी छोड़ के दिल्ली में रहना है, मैं वापस आया अपने ऑफिस घर। तो वहां एक लेटर पड़ा था इंटरव्यू मेरी हायर पोस्ट के लिए। अब आप सोचो किसी ने नौकरी छोड़नी हो वो इंटरव्यू देगा? उसको क्या जरूरत है अपनी ही कंपनी में। तो मैंने सोचा ये इंटरव्यू काहे का देना, मैं तो कल रिजाइन करने वाला हूं। तो मोहिनी बहन हमारे पास रहती थी ये जो दादी के साथ है, वो ध्यान में जाती थी। मैंने कहा बहन जी पूछ के आओ कि ये इंटरव्यू क्या करना है। कहती बाबा कहता कि करो इंटरव्यू। पर मैंने कहा क्यों करूं? कहती है बाबा कहता है ना करो जब तक यहां हो। मैंने कहा मैं तो कल रिजाइन करने वाला हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर पूछ के आओ। वो फिर गई तो बाबा ने कहा देखो उसको समझाओ कि अगर वो नौकरी छोड़ भी देगा लोग पूछेंगे ये क्या था, तो अगर इसकी पिछली पोस्ट बड़ी होगी वो भी सेवा करेगी, अब हमारे दिमाग में तो ये था नहीं, तो हमने कहा ठीक है। अब इंटरव्यू एक बारी मेरा पहले हुआ था तो भी गड़बड़ सा था इंटरव्यू, मैंने कहा जाते समय भी क्या तो बाबा कहता है जाओ। अच्छा हम इंटरव्यू करने गए, ये लास्ट आइटम है। अब क्या हुआ, वो बहुत बड़ी पोस्ट थी तो हमारी 8 फैक्ट्रियां थी हिंदुस्तान भर में, सबके कैंडिडेट आए हुए थे। पहले पहले मुझे ही बुला लिया, पहले वाले को ज्यादा सवाल पूछते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो देखा बोर्ड भी बहुत बड़ा था, बोले आप 17 साल एक ही जगह रहे हैं आप, क्योंकि बाबा ने कहा था तुम चेंज चूंज नहीं कराओ वहीं रहो, बाबा कोई आबू से बाहर जाता है। अच्छा अब तुम्हें अगर हम जॉब देंगे तो तुम्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मुझे तो कोई भय भू था नहीं, छोड़ना ही था। मैंने कहा आपको पता है मेरे घर में बीके का सेंटर है, वहां कोई प्राइवेट अकोमोडेशन नहीं, मेरे तो हालात सेम है। इतना ही कहा था उसका चेयरमैन का फोन आया, तुम्हें मंत्री जी बुला रहे हैं दिल्ली में। बोला मैं तो जा रहा हूं, इनसे पूछते रहो इंटरव्यू का क्या होगा, इनसे पूछते रहो जल्दी आ जाऊंगा। अब वो सारे रिलैक्स हो गए। तो बोले आपकी हॉबीज क्या है, इंटरव्यू के चेंज हो गया सारा, क्या बोलूं। मैंने कहा जी मेरे शास्त्र धार्मिक स्टडी करना। और क्या कहता, बोले तुमने गीता पढ़ी है। अब एक ही किताब है जो मैंने पढ़ी है, वो भी हिंदी में, संस्कृत तो मुझे। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक बताओ। अब मुझे संस्कृत पता है जो मानते हैं, बोलना नहीं आता। तो मैंने कह दिया टू मी मन मना भाव मध्य अजी भाव, टू मी ऐड कर दिया। उन्होंने फिर ऐसे सिरे लाया तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा टू मी यानी मेरे लिए ये है। मैंने बोलना शुरू कर दिया कि अगर परमात्मा को ही नहीं जानते तो याद क्या करोगे, और शरीरधारी तो परमात्मा हो नहीं सकता। उसमें छोड़ के कहता अच्छा अच्छा छोड़ो, गीता के अनुसार बताओ। एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा उसको मारने जा रहा है छुरा लेकर, आप खड़े देख रहे हैं, आप गीता के अनुसार क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं मौत वौत से नहीं डरता, लेकिन मैं लॉ अपने हाथ में नहीं लेता, तो मैं किसी पुलिस वाले को रिपोर्ट करूंगा। उसने फिर सिर लाया, फिर बोला मान लो जिसको वो मारने जा रहा है वो आपका भाई है, फिर क्या करोगे। तो मैंने कहा जी भाई बना है कर्मों के हिसाब से, तो मेरी थोड़ी ज्यादा ड्यूटी है, मैं देखूंगा मैं क्या करूंगा, ऐसे गोल जवाब दिया। दूसरे ने बोला 8 मिनट हो गए इनको जाने दो। मैं आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया। अब आप सोचो ये भी बाबा का कमाल है कि उसने छुड़वाया भी रखवाया भी, बढ़ा के वो भी छुड़वाया। तो हमने हर सीन देखा है बाबा कैसे मदद करता। ओम शांति।
अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। तेरी आंखों से पीते हम है अमृत प्यारी, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया, दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।